हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 29। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इतना मीठा मीठा बोला कृष्ण ने, ऐसा लगता है बोलते रहो। कितने सुंदर शब्द हैं। भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। शब्दों का अर्थ भोक्तारं अर्थात भोगने वाला या भोक्ता, यज्ञ अर्थात यज्ञ, तपस्यां अर्थात तपस्या का, सर्वलोक अर्थात संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महेश्वर परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर माम अर्थात मुझ कृष्ण को, शांतिम अर्थात भौतिक यातना से मुक्ति, ऋच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण कृष्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी बड़े महान हैं। वेदों में श्वेताश्वत्र उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश्वराणं परमं महेश्वरं त्वं देवतानं परमं च देवतम् ऐसा कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यहाँ है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त करना असंभव है, अर्थात शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यता कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग ही है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आ जाता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव से जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप में है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वकदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। श्रीमद् भगवद् गीता के पंचम अध्याय जिसका नाम है कर्म योग या कृष्ण भावना में अपने कर्म, उसका आज हम अंतिम श्लोक यानी ये पूरे अध्याय का कंक्लूजन, कि पूरे अध्याय का न सार है ये श्लोक, बल्कि यूं कहा जाए कि भक्ति का सार है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है और इस श्लोक में भगवान हमें इस संसार में शांति स्थापित करने का फॉर्मूला बताते हैं। इस श्लोक को पीस फार्मूला वर्स कहते हैं कि शांति स्थापित करने का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि यदि इस संसार में शांति स्थापित करनी है तो उसका अगर कोई तरीका है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। बस इस एक श्लोक के अनुसार ही इस संसार में शांति स्थापित की जा सकती है। केवल एक यही श्लोक और एक ही फॉर्मूला है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है इस संसार में शांति स्थापित करने का। भले ही बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पॉलिटिक्स बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब तक कोई भगवान की इस बात को नहीं समझता या अपने जीवन में नहीं उतारता है तो शांति स्थापित करना असंभव है। और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं है वो सुख की संभावना करना छोड़ दे, उसे कभी भी संसार में सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। ना इस लोक में, ना यम लोक को अस्ति न परो ना सुखम, उसको कुछ जिसके पास शांति नहीं है उसे ना इस संसार में सुख मिलेगा ना दूसरे संसार में सुख मिलेगा। तो भगवान कृष्ण आज बता रहे हैं कि अगर कोई इस भौतिक जगत में भी शांति को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये करना पड़ेगा। तीन काम भगवान हमें इस श्लोक में बता रहे हैं जो कि करने से ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति, शांति स्थापित हो सकती। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले क्या, भोक्तारम, यानी अगर कोई ये समझ जाए कि संसार में जो कुछ भी है उसका भोगने वाला मैं हूँ। क्या चीज, यज्ञ यानी जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, तपस्या यानी तपस्या, और दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, और मैं जितने भी लोक हैं उनके जितने देवी देवता हैं उनका महेश्वर हूँ, और क्या हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां, एक तो मैं भोक्ता हूँ, दूसरा महेश्वर हूँ, तीसरा सुहृद हूँ यानी सबका हितैषी हूँ। तो यदि कोई इतना जान लेता है तो ज्ञात्वा माम, जो इस प्रकार जान लेता है शांति मृच्छति, वो शांति प्राप्त करता है जीवन के हर स्टेज पर शांति। तो भगवान शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में समस्त प्राणी शांति के लिए भटक रहे हैं, परंतु भगवान के इन वाक्यों को समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए शांति स्थापित नहीं हो रही है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं पहली बात, भोक्तारम, मैं भोक्ता हूँ, यानी कृष्ण कह रहे हैं कि केवल मैं ही भोक्ता हूँ, अकेला मैं, केवल कृष्ण को ही ये अधिकार है कि वो भोक्ता बने, क्योंकि वास्तव में समस्त वस्तुओं के ऊपर कृष्ण का ही अधिकार है, परंतु हम इस संसार में भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए संसार में दुखी हैं। क्यों, क्योंकि हम कृष्ण से पृथक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, यही हमारे दुखों का मूल कारण है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को कि हम अंश हैं भगवान का और हमारा कार्य भगवान को संतुष्ट करना है, इसी के द्वारा हम संतुष्ट होंगे, इस वास्तविक ज्ञान से अवगत नहीं है, अज्ञानता के कारण अपने आप को ये शरीर और इंद्रिय मान बैठते हैं और यही संस्पर्शजा होगा दुख योनया एवच। भगवान ने बताया 5.22 में कि इन इंद्रियों को भोग प्रदान करके हम और भी सुखी होने की इच्छा करते हैं, लेकिन दुख योनया एवच और भी दुख और भी ज्यादा दुख प्राप्त हो रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान से अवगत नहीं है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम कैसे खुश होंगे, भगवान को प्रसन्न करके। तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि अगर आप ये जान जाओ भोक्तारम, मैं ही केवल भोक्ता हूँ, तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। परंतु जीव इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जीव चाहता है कि मैं आनंदित हूँ। क्यों भाई? खाली कृष्ण क्यों आनंदित हो? हम नहीं चाहते हैं कि खाली कृष्ण को ही, किसी को भी इस संसार में भी, जैसे हम क्या चाहते हैं, किसी को भी स्पेशल ना पोजीशन हम नहीं देख सकते कि किसी और को मुझसे ज्यादा अच्छी पोजीशन मिले। तो उसी तरह से, क्योंकि हमारी नेचर है जीव की, वो नहीं चाहता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई आनंदित हो। तो स्पेशल पोजीशन वो क्यों नहीं चाहता दूसरे को मिले? क्योंकि हर जीव की ये इच्छा है कि स्पेशल पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए, है ना, मैन ऑफ द मैच मुझे मिलना चाहिए। और अगर वो कृष्ण को मिल रहा है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हम चाहते हैं भोगना, हम चाहते हैं। तो वास्तव में भक्तों, आत्मा के पतन का यही कारण है कि आत्मा को भगवान के दाम से निकाल दिया गया। उसका यही कारण है कि वो भगवान से पृथक आनंदित होना चाहते। तो जाहिर सी बात है, संसार में भी आने के बाद वो चाहती है कि मैं आनंदित हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.27 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गीयन्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा का मतलब होता है कामना, एंजॉय करने की कामना। और जब आप इच्छा करते हो एंजॉय करने की, तो फिर डेफिनेटली द्वेष कर रहे हो किससे? जो दूसरा एंजॉय कर रहा है ना। जब आप चाहते हो कि एंजॉयमेंट मेरे लिए होना चाहिए, तो किसी और को एंजॉय करते हुए देखकर द्वेष। इसलिए भगवान ने क्या कहा, इच्छा द्वेष समुत्थेन। और दूसरा द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व का क्या मतलब होता है? इस जगत, ये भौतिक जगत है, वो द्वंद्व से भरा हुआ है। यानी इस जगत में क्या है, सुख है तो उसके साथ दुख भी है। अगर इस जगत में किसी को मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है, जय है तो पराजय है, सुख है उसके साथ दुख ही है। वास्तव में भक्तों, ये मोह ही है। क्योंकि ये सारे जो द्वंद्व है वो इस भौतिक जगत के, भौतिक जो जितने भी द्वंद्व है वो इस भौतिक शरीर से रिलेटेड है। लेकिन हम तो, क्योंकि सच्चे आनंद परमात्मा का अंश आत्मा है, तो ये द्वंद्व जो है वो हमारे इस आत्मा पर कोई भी असर नहीं करते। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जगत है वो सच्चित आनंदमयी है, उसके अंदर द्वंद्व नहीं है, उसके अंदर केवल आनंद है, केवल सुख है, केवल जय है, केवल संतुष्टि है, उसके अंदर द्वंद्व नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं द्वंद्व मोहेन भारत, क्योंकि इस संसार में द्वंद्व के कारण जीव मोहित हो गया है, मोह उत्पन्न हो जाता है। फिर क्या है, भगवान कहते हैं सर्वभूतानि सम्मोह, संपूर्ण जितने भी जीव हैं उन, वो सब इसी में मोहित हो गए हैं। और सर्गे, सर्गे का मतलब होता है इस भौतिक जगत में जीव गिर जाता है, स्वर्गे यान्ति परंतप, कि इस संसार में वो वापस से गिरा, गिरने का, फॉल डाउन होने का क्या कारण है? इच्छा द्वेष, डिजायर टू एंजॉय, वो इच्छा करता है कि मुझे एंजॉय करना है। अब क्योंकि जीव की इस प्रकृति में मिश्रण होने के कारण ये इच्छा हो जाती है कि मैं इन भौतिक वस्तुओं से या भौतिक जगत से एंजॉय करूं, मैं इसको भोगूं, तो उस भोग की इच्छा के कारण इस जीव का इतना पतन हो जाता है कि कभी उसको कुत्ता बनना पड़ता है, कभी बिल्ली बनना पड़ता है, तो कभी गटर का कीड़ा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जीव भोग की वासना रखता है, लेकिन ये जीव ये भूल जाता है कि भोक्ता केवल कृष्ण है, ये भोक्ता हम नहीं है। हमारी वास्तविकता क्या है कि हम भोग्य हैं, हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं, और कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। यही हमारी नेचर है, यही हमारा स्वभाव है, लेकिन यदि हम अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करते तो दुखी होना पड़ता है। देखिए, आप जैसे एक मनुष्य है, उसका स्वभाव है कि वो दोनों पांव फर्श पे रख के खड़ा हो, ठीक है, लेकिन यदि वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है, एक पांव से चलता है, तो क्या होगा? उसे कष्ट मिलेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से हर चीज जो हमारी स्वाभाविक नेचर है, उसको यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी कार्य आर्टिफिशियली करना चाहते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनेगा। कोई भी कार्य यदि जीव जो उसकी नेचर के विपरीत कर रहा है, तो उसके लिए दुख का कारण बनेगा। तो वास्तव में जीव की नेचर क्या है? भोग्य बनना, भोक्ता बनना नहीं। भोक्ता तो भगवान कहते हैं, भोक्ता रम, मैं हूँ भोक्ता, तो मैं हूँ, लेकिन जीव भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए वो भगवान का एनवियस बन जाता है और भगवान से शत्रुता रखता है। लेकिन यहाँ पर एक बात को क्लियर करते चले कि कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कृष्ण भले एंजॉय करे, कृष्ण भोक्ता बने, हमें कृष्ण से कोई द्वेष भी नहीं है, जितना कृष्ण को भोक्ता बनना है भले बने, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु साथ साथ में हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कृष्ण अपने क्षेत्र का एंजॉय करे और मैं अपने क्षेत्र का एंजॉय करूं, यानी हम भी चाहते हैं कि मुझे भी एंजॉय करना है, कृष्ण अपना एंजॉय करे और मैं अपना एंजॉय करूं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा धन, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी मेरी प्रॉपर्टी है ना, भगवान का सब कुछ है। तो भगवान हर एक चीज को एंजॉय करेंगे, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे कोई कहता है कि मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ, भगवान भी एंजॉय करे, इसका मतलब होता है कि भगवान के एंजॉय में रिस्ट्रिक्शन पैदा हो रही है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इन सारा कुछ जो कुछ भी है उसको एंजॉय करने वाला मैं हूँ। जैसे किसी एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो और दूसरा बंदा बोले कि हाँ ठीक है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो चलेगा, परंतु मुझे भी बनना है, तो इस तरह से कोई नहीं हो सकता, एक ही बन सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर, दो नहीं बन सकते। उसी तरह अगर कोई कहता है कि ठीक है, कृष्णा हर जगह पर भले ही प्रभुत्व जाता है, हर जगह से भोक्ता बने, परंतु मैं मेरी जगह पर उनको अधिकार नहीं दे रहा, मैं अपनी जगह का आनंद, लेकिन कृष्ण हर जगह का आनंद लेंगे क्योंकि कृष्ण हर जगह के प्रोप्राइटर है। तो जो ये सोचता है कि कृष्ण के साथ साथ मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो कृष्ण के साथ एनवियस है, वो कृष्ण के साथ द्वेष कर रहा है, क्योंकि कृष्ण की संपत्ति का भोग करना चाहता है। और दूसरी साइड पर वो शुद्ध भक्त जो केवल भगवान की भक्ति में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अपने लिए किसी भी आनंद की कामना नहीं करती, जैसे गोपियां। कथा आप सब जानते हैं कि भगवान ने कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है नारद, कुछ करो। नारद ने कहा प्रभु क्या करने से आपके सिर का दर्द दूर होगा? तो भगवान ने कहा किसी प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त होगा उसके पैरों की डस्ट अगर मुझे मट्टी धूल मिल जाएगी तो मेरे सिर का दर्द दूर होगा। नारद ने हर जगह पर ढूंढा मगर कोई भी ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इस तरह से तो नरक भुगतना पड़ेगा। परंतु जब नारद गोपियों के पास गए तो गोपियों ने क्या किया, सबसे पहले वो यमुना में गई, अपने पैरों को यमुना के पानी से गीला कर दिया और उसके बाद उस रेत वहां पर वृंदावन के मिट्टी के ऊपर पांव रखा तो सारी गोपियों के पांव इतनी सारी मिट्टी चिपक गई और फिर वो सारी मिट्टी को वो बॉक्स भर भर गए ना दे रही थी नारद मुनि को कि लीजिए ले जाइए हमारे कृष्ण के सर का दर्द दूर होना चाहिए। नारद ने कहा क्या कर रही हो, इस तरह से तुम नरक में जा सकती हो। तो गोपियों ने कहा हम नरक में जाएंगे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। कृष्ण की एक जरा सी तकलीफ भी यदि हमारे समस्त कष्टों का कारण के बदले में वो अगर उसकी वो तकलीफ दूर हो जाती है तो हमें स्वीकार है। हमारी कोई स्थिति नहीं है, हम केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, चाहे उसकी बदले में हमें कितना ही दुख क्यों न सहना पड़े। वास्तव में भक्तों जब जीव अपने आनंद और अपने दुख को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, अपने आनंद और अपने दुख की ओर कोई ध्यान नहीं देता, केवल भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य बनाता है, यही वास्तविक भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं भोक्तारम्। और किसका भोक्ता हूं, भगवान कहते हैं यज्ञ। सबसे पहले भगवान ने यज्ञ की बात की क्योंकि यज्ञ कौन करते हैं, कर्मकांडी या कर्मयोगी। तो भगवान कहते हैं जितने भी यज्ञ हम करते हैं उसका भक्त भोक्ता कृष्ण है। तो कुछ लोग कर्मकांडी लोग यज्ञ करते हैं, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं देखो यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 9.23 में ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और अत्यंत ही श्रद्धा सहित उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु हे परंतप वो ये गलत विधि से करते हैं। वास्तव में भक्तों क्योंकि कृष्ण ही समस्त देवी देवताओं को ये पावर दिया है कि वो आपकी कोई आराधना को स्वीकार करके आपको कोई भौतिक वस्तु प्रदान करते हैं, तो वास्तविक पावर किसका है, कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7.21 में कामस्तस्य हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसके ज्ञान को इच्छाओं के द्वारा हरण कर लिया गया है वही देवताओं की ओर जाते हैं। वास्तव में देवताओं के पास कोई पावर नहीं है, ये देवता भी कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की पूजा के कारण कृष्ण ने उनको ये अधिकार दिया होता है कि वो किसी भी जीव को कोई लिमिटेड फल प्रदान कर सकते हैं। जैसे देवता जो है वो केवल कृष्ण के भक्त हैं इसीलिए पूज्य, यदि अगर उनको कहा जाता है कि उनके प्रणाम भी किया जाता है तो केवल इसलिए करना चाहिए कि आप कृष्ण के भक्त हो, यही आपकी वास्तविक पहचान है, इसीलिए आप भगवान हो, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक के टाइम पर खड़ा होता है और हाथ ऊपर करता है तो क्या करता है, क्या होता है, जो बड़े बड़े बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति होते हैं ना वो भी स्टॉप हो जाते हैं। वास्तव में वो इतने पावरफुल व्यक्ति जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस, वो जो पुलिस वाला होता है वो तो एकदम छोटा व्यक्ति होता है उसका आदर नहीं कर रहे हैं, उसके रोकने के लिए नहीं रोक रहे हैं वो, बल्कि क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, तो इसी के कारण क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है इसलिए उसका आदर हो रहा है। वरना बड़े बड़े व्यक्ति उस साधारण से ट्रैफिक पुलिस के कारण नहीं, उनकी उसकी स्थिति के कारण उसका आदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है और वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट का आदर हो रहा है। उसी प्रकार देवता भी क्योंकि भगवान के आदेश का पालन करते हैं, इसलिए देवताओं की अगर कोई भक्ति कर रहा है तो समझो भगवान भगवान अब कह रहे हैं कि वे भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता भजंता श्रद्धयान्विता ते भी मामे व कौन ते, वो भी मेरी ही कर रहे हैं क्योंकि वो देवता तो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन भगवान एक और बात भी कह रहे हैं कि अविधि पूर्वकम, ये कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी प्रॉपरली कार्य नहीं किया हुआ है, इम्प्रॉपरली कार्य किया जा रहा है। जैसे वृक्ष के पत्ते और वृक्ष की जड़, यदि कोई व्यक्ति वृक्ष को सींचना चाहता है और उसके पत्ते पत्ते को उठा उठा के पानी दे रहा है तो वो किसको पानी दे रहा है, वास्तव में वो वृक्ष को ही पानी दे रहा है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई देवताओं की भक्ति कर रहा है तो वास्तव में वो भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन वो तरीका सही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भजंत्य अविधि पूर्वक, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, भगवान की भक्ति। तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी तुम यज्ञ कर रहे हो चाहे किसी के भी नाम है, वास्तव में वो मेरे लिए होने चाहिए। तो ये भगवान ने बताया कि जितने भी कर्म कांडी हैं, जितने भी कर्म योगी हैं, वो जितने भी यज्ञ इत्यादि करते हैं उनका भोक्ता मैं हूँ। और उसके बाद भगवान कहते हैं तपस्या भोक्तारम यज्ञ तपस्या, ये तपस्या जो है वो ज्ञानी लोग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर बताते हैं 9.27 में, मेरा प्रिय सर्वोच्च श्लोक है, करुषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो तपस्या करता है, जो यज्ञ करता है, जो अर्पण करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। तो कोई ये सोच सकता है कि भगवान को क्या आवश्यकता है इतनी, जो इतना कह रहे हैं ये तपस्या मेरे लिए करो, यज्ञ मेरे लिए करो, जो अर्पण कर रहे हो मुझे करो। भगवान को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, उसी की चीजें हमारे पास है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे लिए करो। भगवान उसका उत्तर देते 9.28 में, शुभाशुभ परित्यागम मोक्ष से कर्म बंधन। अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे मेरा फायदा नहीं है बल्कि तुम्हारा फायदा। क्या शुभ अशुभ कलई रेवम, जितने भी शुभ कार्य हैं, जितने भी अशुभ कार्य हैं, जितने भी तुमने कार्य किए हैं, उन सबको, उन सब के फल को तुम मेरे लिए त्याग दो। इस तरह से तुम कर्म के बंधन से छूट जाओगे। और जब तक तुम्हारे पास कर्मों का बंधन, ये कर्मों की श्रृंखला है, तब तक तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी आनंदित नहीं हो सकते, कभी मेरे पास नहीं आ सकते। इसलिए सबसे पहले तुम समस्त वस्तुओं को मेरे लिए त्याग दो। समस्त वस्तुओं के भोक्ता मैं हूँ, भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्याम। तो ये पीस फॉर्मूले का पहला पार्ट जिसके लिए भगवान ने कहा, तुम जितने भी यज्ञ कर रहे हो, जितने भी तपस्या कर रहे हो, तुम समझ लो इस बात को कि उसका भोक्ता मैं हूँ। अब हम इस फॉर्मूले का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं जितने भी लोक हैं, और जितने भी लोगों के देवता हैं, उन सब का ईश्वर, ईश्वर तो बहुत सारे, परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम का मतलब होता है परम ईश्वर, यानी कि अब छोटे छोटे जितने भी ईश्वर भगवान ने बनाए हैं, क्रिएटर्स, ईश्वर का मतलब होता है, तो क्रिएटर्स तो और भी हैं, जैसे हम भी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन वो सेकंड क्रिएटर है। वास्तव में भगवान ये बता रहे हैं कि समस्त कारणों का मूल कारण मैं हूँ। भगवान कहते हैं 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्। बुधा भाव समन्विता, भगवान कहते हैं मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, और जो बुद्धिमान या बलिभांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि चाहे जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, चाहे भौतिक हैं, उनका ईश्वर में हूँ। दूसरे शब्दों में हम सबको ये जानना चाहिए कि क्योंकि भगवान ही सर्वलोक का महेश्वर है, तो इसका मतलब इस महेश्वर का क्या मतलब होता है कि वो समस्त वस्तुओं के ईश्वर भी है और समस्त वस्तुओं को कंट्रोल भी कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग भी एक तरह के प्रोप्राइटर हैं, ईश्वर हैं अपनी वस्तुओं के। जैसे हम समझते हैं कि हमारे शरीर के, हमारे धन के, हमारे घर के, हमारी प्रॉपर्टी के हम ईश्वर हैं, परंतु इन वस्तुओं पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। वास्तविक कंट्रोलर जो, प्रोप्राइटर जो होता है वो कंट्रोलर होना चाहिए। जैसे हम अगर सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारा है तो फिर इससे बीमारी आती है, उस पर हमारा बस नहीं चलता, इससे मृत्यु आती है, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारा उस पर बस नहीं चलता। अगर हम समझते हैं कि हमारे धन के प्रोप्राइटर हम हैं, परंतु धन यदि चोरी हो जाता है तो उसमें हमारा बस नहीं चलता। धन अगर हमारा होता तो वो धन अगर कोई चोरी करे तो धन को बोलना चाहिए कि नहीं, मैं तुम्हारा थोड़ी, तुम मुझे कैसे लेकर जा रहे हो, मैं तो अपने स्वामी का हूँ, लेकिन वो आराम से चला जाता है। मतलब जो वस्तु है उसे पता ही नहीं है मैं किसकी हूँ, है ना। लेकिन हम ये अपना बताते रहते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। हमारा वास्तव में किसी भी वस्तु पर कंट्रोल नहीं है, केवल ये कहने की बात है कि इस वस्तु का प्रोप्राइटर मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, लेकिन वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं कि जो अकबर बादशाह था ना, वो भी ये सोचता था कि जो इतनी बड़ी सल्तनत है वो मेरी है। तो बीरबल को अक्सर कहता था कि बीरबल, मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हूँ। तो एक बार बीरबल ने सोचा कि महाराजा को बहुत अहंकार है, वो हमेशा सोचता है कि मैं बादशाह हूँ, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ऐसे करता है। तो इनके बादशाह के इस अहंकार का नाश करना पड़ेगा। तो एक बार बीरबल ने क्या किया, एक फकीर का वेश धारण करके बादशाह का जो पर्सनल गार्डन था उसके अंदर जाके सो रहा था। तो जब बादशाह अकबर वहां पर आए और देखा कि एक फकीर सो रहा है तो हैरान हो गए, बोला मेरे इस पर्सनल गार्डन में कोई फकीर आकर क्यों सो रहा है, कौन हो तुम, क्या सारे गार्ड कहाँ गए, किसने आने दिया इसको। तो शोर करके उसको उठाया फकीर को, और फकीर को कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपका क्या काम है, ये मेरा गार्डन है। तो फिर फकीर ने कहा कि देखा गौर से राजा को और थोड़ा सा स्माइल पास किया और कहा कि ये आपका है। तो राजा ने कहा हाँ ये मेरा है। तो बोला आप जब तक पैदा नहीं हुए थे आपसे पहले ये किसका था। तो बादशाह ने कहा मेरे वालिद साहब का, मेरे पिताजी का था। तो बोला अच्छा उनसे पहले, बोला उनके फादर का था। तो बोला अच्छा फिर आपके मरने के बाद ये किसका होगा, बोला तब मेरे पुत्र का होगा। बोला फिर उसके बाद, बोला ये उसके पुत्र का होगा। तो फिर फकीर जोर से हंसने लगा और कहा, राजा ये कोई महल नहीं है, ये तो धर्मशाला है। तो बादशाह ने कहा, ये धर्मशाला है, पागल हो गए तुम, ये मेरा महल है, उसका इतना खूबसूरत गार्डन तुमको धर्मशाला लग रहा है? तो फिर है ना उस फकीर ने कहा, देखिए धर्मशाला का क्या मतलब होता है कि जो जब यात्रा के लिए जाते हैं तो एक धर्मशाला में रूम बुक कराते हैं, उसमें कुछ दिन रहते हैं, वहां पर कुछ अधिकार होता है उनका, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो चले जाते हैं, दूसरे लोग आकर वहां पर ना रहते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी चले जाते हैं दूसरे आकर, यानी कि टेम्पररी जो पोजीशन होती है वो होती है, लेकिन प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है कि आपका अधिकार सदैव रहे। लेकिन संसार की किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार सदैव नहीं रहता है, इसका मतलब है आप किसी भी वस्तु के महेश्वर नहीं हो। वास्तविक महेश्वर भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं हूँ समस्त वस्तुओं का महेश्वर। इस तरह से अकबर बादशाह की आंखें खुल गईं, उनका अहंकार नष्ट हो गया और वो जान गए कि ये कोई और नहीं, मेरा बीरबल ही ऐसा कर्तव्य कर सकता है। तो वास्तव में भगवान ये बता रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या ये संसार में जितना भी धरती है, हर जगह पर केवल मेरा ही कंट्रोल है, मैं ही हर एक वस्तु का मालिक हूँ, हर एक वस्तु मेरी ही है। वास्तव में कृष्ण इज इटर्नल प्रोप्राइटर, है ना, कृष्ण सदैव हर जगह के हर वस्तु के प्रोप्राइटर है, महेश्वर है, हर एक जगह वो उसके मालिक ही नहीं, हर एक एटम के अंदर रहते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल किए हुए हैं, हर एक वस्तु कृष्ण की प्रॉपर्टी है। और हम यहाँ पर खाम खा में झगड़ा करते हैं कि हमारी है ये वस्तु, ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है, हर सदा ये जमीन और जायदाद का झगड़ा फसाद होता रहता है, क्योंकि हम वास्तव में कृष्ण की प्रॉपर्टी को अपना समझते हैं और इसी में लड़ रहे हैं। लेकिन हम सब चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो कुछ भी है वो भगवान का है और भगवान को ही प्राप्त होगा। इसे भगवान बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और उसके बाद तीसरा पॉइंट भगवान बता रहे हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम का मतलब होता है भला चाहने वाला। वास्तव में कुछ लोग इसको दोस्त कहते हैं, है ना, फ्रेंड या मित्र। अब बचपन में है ना कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो कि बड़े होने के बाद अब दोस्त नहीं रहते, भूल जाते हैं। वो भी तो लकी हैं जो जिसके दोस्त होते हैं लेकिन फिर बाद में दोस्त नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर तो बदकिस्मती इतनी बढ़ जाती है कि जो दोस्त होते हैं वही बड़े होने पर दुश्मन बन जाते हैं। जब आपको उनकी आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी आपके सामने नहीं आते। इसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी जब मौसम अच्छा है तो फिर दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब आवश्यकता आती है तब वो आपकी किसी काम नहीं आते। इस संसार में कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। वास्तव में भक्तों, संस्कृत में दोस्त शब्द की अलग अलग व्याख्या होती है। कुछ जैसे मित्र, मित्र का क्या मतलब है, सोशल फ्रेंड ना? और कहीं कहीं मित्र दोस्त को क्या कहते हैं, बंधु। बंधु का मतलब होता है ऑफिशियल फ्रेंड। और सखा, सखा का मतलब होता है लंगोटिया यार। लेकिन भगवान यहाँ पर ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद हूँ मैं सदैव आपका वेल विशर हूँ, मैं सदैव आपका भला चाहने वाला हूँ। इस संसार में अगर कोई आपका वास्तविक हितकर है तो वो केवल और केवल भगवान कृष्ण है। भगवान सदैव आपका हितकर है, सर्व समय में, सर्व जो भी आपके ऊपर समय आता है, चाहे आप किसी भी जीव जो है वो किसी भी शरीर के अंदर क्यों न चला जाए, भगवान ही उसके सुर। भगवान कहते हैं सर्व सुहृदम सर्वदेही नाम, जितने भी देही हैं उनका भी मैं सुहृद हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कैसे हैं भगवान सदैव सबके हितकर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीन उदाहरण से हम ये प्रूफ करेंगे कि भगवान सदैव हमारे हितकर हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि अगर हम इस संसार में देखते हैं, अगर किसी का दोस्त बुरा कार्य करता है, मतलब गलत चला जाता है, खराब हो जाता है किसी तरीके से, तो फिर उससे कोई दोस्ती नहीं करता, है ना? या फिर अगर वो अपने ही दोस्त को बुरा कहने लगता है ना, कि अगर किसी का कोई दोस्त कहे और फिर पता चले कि पीछे से वो कह रहा है कि नहीं ये अच्छा बंदा नहीं है, बुराइयां करता है उसका, या फिर उसके विषय में उल्टी सीधी बातें करता है, तो फिर वो उससे दोस्ती नहीं करता। लेकिन यहाँ संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते, कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यहाँ तक कि कहते हैं कि कृष्ण का कोई स्वरूप ही नहीं है, कृष्ण की का उपहास करते हैं, कृष्ण के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कभी ये नहीं सोचते कि अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ, मुझे भगवान नहीं मान रहा है, मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। तो जिस प्रकार माता पिता बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, बच्चे कभी कभी माता पिता की नाफरमानी करते हैं, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, लेकिन फिर भी पिता और माता सदैव प्रेम करते हैं। उसी प्रकार भगवान जीव आत्मा भले ही जो भी करता है, भले कितना ही घिनौना कार्य करेगा, अगर भगवान कभी भी उससे द्वेष नहीं करते, भगवान सदैव उनसे प्रेम करते हैं। वास्तव में सुहृद वो है जो जब आप उसके मित्र हो तब वो भी आपका मित्र हो, लेकिन जब आप उसके मित्र नहीं बनते, जब आप उसके मित्र नहीं हो फिर भी वो आपका मित्र बनता है, इसे कहते हैं सुहृद। यहाँ तक कि अगर आप उससे कभी नफरत भी करो तो भी वो आपसे प्रेम करे, इसे कहते हैं कृष्ण। इसीलिए जो जीव भगवान से प्रेम नहीं करते उनसे तो भगवान प्रेम करते ही हैं, परंतु जो भगवान से नफरत करते हैं भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं। भगवान हमारे सुहृद हैं। इसके दूसरा उदाहरण ऐसे देते हैं कि कृष्ण कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ते, है ना? जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों न चला जाए, हमारे हृदय में भगवान हर एक योनि में रहते हैं। बाकी जो हमारी फैमिली है, हमारे मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म तक ही हमारे साथ रहेंगे। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण 84 लाख योनियों में, हम किसी भी योनि में चले जाएंगे, वो सदैव हमारे हृदय में रहते हैं। इसका शास्त्र इसका उदाहरण देते हैं कि एक वृक्ष पर दो परिंदे, और दोनों परिंदे उस वृक्ष में रहते हैं, इसमें से एक क्या करता है, वो भौतिक भोग की कामना करता है और दूसरा सदैव उसकी ओर निहारता है कि कब ये इस भौतिक भोग से थक जाएगा और मेरी ओर दृष्टिपात करेगा कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उपदृष्टा अनुमंताच भर्ताप, वो सदैव उपदृष्टा देखता रहता है, उसको अनुमति देता है। देखो भगवान सुहृद है तो जो भी जीव इच्छा करता है उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अनुमति देता है, तभी तो जीव कार्य करता है। लेकिन फिर भी उसकी हमेशा यही इच्छा होती है, वो हमेशा साथ रहता है, हमेशा जीव के हृदय में। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो। इसीलिए भगवान हम सबके सुहृद हैं। और तीसरा पॉइंट है कि कृष्ण हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तव में भक्तों हम इस संसार में आए इसीलिए हैं क्योंकि हमारे हृदय में एंजॉय करने की इच्छा है। तो ये जो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमें याद कराते हैं, भगवान बताते हैं कि बेटा, बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान कहते हैं 15.15 में, अहम् सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा नहीं ये वाला नहीं है सूर्य 15.15 सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृते ज्ञानम अपोहनम च मैं समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ और उन्हें यादगिरी ज्ञान और भूल जाने की शक्ति प्रोवाइड करता हूँ यादगिरी देते हैं कि हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और बताते हैं कि देखो तुमने इच्छा की थी भौतिक भोग करने की इसलिए आज तुम बिल्ली बने हो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बिल्ली की योनि में आपको एंजॉय करना है ये जो फिश है इसको उठाओ दबोचो मुंह में और इसको खाओ इस तरह से तुमने इच्छा की थी इसी तरह से तुम्हें भोग करना है वरना कोई उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती कि किस तरह से उनको भोग करना है जैसे अगर कोई लिजर्ड बनती है कोई जीव अगर लिजर्ड बनता है तो उसको बताता है कृष्णा आओ माय डियर लिजर्ड मैं बताता हूँ तुमको कि कीड़ा उठाओ और इसको खाओ कौन सिखाता है उनको कोई मैनुअल बुक तो नहीं है कोई उनको सिखाने वाला नहीं लेकिन उनको पता होता है छोटा सा भी बच्चा होता है किसी भी जानवर का तो उसे पता है मेरी इंद्रिय तृप्ति किससे होगी तो भगवान उसे याद कराते हैं हृदय में बैठे हुए भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि अभी तुम्हारी जो योनि है उसके अनुसार तुम इस तरह से एंजॉय करो अगर तुम कुत्ता बने हो तो तुम्हें इस तरह से कार्य करना है तो तुम इसी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे अगर तुम सुअर बने हो तो तुम्हें विष्ठा खाने से आनंद आएगा और अगर तुम मनुष्य बने हो और मनुष्य बनने के बाद भी तुम उन्हीं जानवरों की तरह कार्य कर रहे हो और उन्हीं की तरह आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो ओके मैं तुम्हें अगले जन्म में मैं मनुष्य से पशु बना दूंगा फिर तुम करना उतना आनंद जितना तुम ये सुहृदम सर्वभूतानां जैसी इच्छा जीव करता है उसको पूरा करने में पूरी पूरी सहायता भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयाचितुम इच्छति तस्य तस्याचराम श्रद्धां तामेव विदधामि हम जिसकी पूजा करना चाहते हो करो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा परंतु साथ साथ भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां यानी कि भले ही वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जीव भले जिस भी हालत में होता है जिस भी योनि में होता है उनका साथ देते हैं लेकिन फिर भी वो सदैव ये इच्छा करते हैं हृदय से चाहते हैं कि जीव अब थक जाए इन भौतिक भोगों को भोगते भोगते इसीलिए कभी गुरु भेजते हैं कभी साधु भेजते हैं कभी शास्त्र भेजते हैं या कभी स्वयं अवतार लेकर आ जाते हैं कि किसी तरह से जीव को आके सिखाऊं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये भौतिक भोग प्राप्त करना नहीं है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूँ मैं ही समस्त भोगों का भोगने वाला हूँ तुम तो मेरे दास हो स्वीकार कर लो अपनी इस इटर्नल पोजिशन को और यही तुम्हारी शांति ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति इसी से तुम्हें शांति प्राप्त होगी हम भूल जाते हैं परंतु भगवान नहीं भूलते भगवान को याद होता है इसे भगवान कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो गए हैं परंतु आप वो सब नहीं जानते माम तो वेत्थ परंतप मैं वो सब कुछ जानता हूँ मैं सदैव आपके पास हूँ मैं आपकी तरह भूलता नहीं हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ भगवान की मेमोरी हमारी तरह से हमने विगत जिस जिस जन्म में जो जो इच्छा की थी भगवान उसी की पूर्ति करने के लिए हमें दूसरा जन्म देते हैं लेकिन साथ साथ में हमें गाइडलाइंस भी देते हैं और भगवान कहते हैं यदि तुम इच्छा करोगे मेरी भक्ति की तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम से मेरे नाम का भजन करते हैं और मेरी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे वो मुझे प्राप्त करेंगे। तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तम, मैं उन पर इतनी कृपा करूंगा कि उनके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दूंगा। नाशयामि आत्म भावस्थ, और उन्हें ऐसी ज्ञान की रोशनी प्रकाश उनको ऐसा प्रदान करूंगा जिससे वो मेरे तक पहुंच सकेंगे, मुझे प्राप्त कर देंगे, अपना आप भी दे देते हैं, इससे ज्यादा और क्या सुहृद होंगे। तो कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे रियल इटर्नल वेल विशर हैं। सदैव भगवान हमारे हित की चिंता करते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने हमें इटर्नल शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला दिया, जिसमें भगवान ने बताया कि कृष्ण ही भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण ही महेश्वर है, प्रोप्राइटर है हर वस्तु का, और सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण ही सबके एवर वेल विशर है, सबके हितकारी है। यदि भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यदि तुम इन बातों को याद करोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इटर्नल पीस, यही शांति का वास्तविक फॉर्मूला है। तो जो जो इस फॉर्मूले को अपनाएंगे उसी को शांति प्राप्त होगी, उसी को सुख प्राप्त होगा और उसी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। आप सब मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। हरे कृष्ण।